ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं उत्तराखंड के अभियोजन निदेशालय में अपर निदेशक विधि केसर सिंह चौहान। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पंकज सनवाल खुलबे।
श्रोताओं, देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों के लागू होने से जहां एक ओर आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, वहीं त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में भी कई प्रावधान किए गए हैं। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे इन 3 नए आपराधिक कानूनों में बच्चों व महिला अपराधों को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं, साथ ही कम्युनिटी सेवा व अन्य प्रावधानों के बारे में भी जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अपर निदेशक विधि अभियोजन निदेशालय उत्तराखंड से केशर सिंह चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
जी, थैंक यू।
सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों और महिलाओं की अगर हम बात करें, हमें इन नए आपराधिक कानूनों में क्या देखने को मिलेगा उनके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही वनरेबल होते हैं। हालांकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे में जब CRPC को बदलकर जब हम नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहे हैं, तो इन कानूनों में महिलाओं व बच्चों के लिए क्या कुछ खास है?
भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में ये धारा 63 से 99 तक जो है महिला और बच्चों के लाभ के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। धारा 69 में प्रवंचना पूर्ण साधनों द्वारा किसी महिला से, मतलब उसकी अपनी पहचान छिपाकर या उत्प्रेरणा या मिथ्या वचन के द्वारा, या जैसे साधारण भाषा में हम कहेंगे कि विवाह का झांसा देकर जो है उसके साथ जो है ऐसा कृत किया जाता था और बाद में वो मैरिज करने से साफ मुकर जाता, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा जो है दंड का प्रावधान किया गया है जो कि पहले नहीं था। इसी प्रकार धारा 86 क्रूरता महिलाओं के साथ, जैसे कोई भी उसको जो है क्रूर व्यवहार करके या उसका आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करके या किसी भी तरह से उसके जीवन या अंग या स्वास्थ्य या मानसिक शारीरिक क्षति का खतरा कारित करने की जो संभावना अगर कोई करता है, तो ये भी उसके प्रति अपराध माना जाएगा। और किसी महिला को भी कोई तंग करता है चाहे किसी भी प्रकार से, तो ये भी उनके लिए एक महिलाओं के संबंध में एक प्राविधान रखा गया है। इसी प्रकार एक नई धारा 95 बालकों के लिए जो है, बालक जो है उनके लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए रखी है। जैसे कोई भाड़े पर नियोजित करता है और उससे कोई ऐसा अश्लील कृत्य करवाने के लिए नियुक्त करता है, तो उसके जो है प्राविधान जोड़े गए हैं, उसमें दंड के प्राविधान रखे गए हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए एक ये भी है कि पहले हमारे जो पुरानी भादवी की धारा थी 354B और 354C, उसमें लिंग के आधार पर वर्गीकृत थे जिसमें केवल पुरुष ही रहता था, लेकिन अब नई सुरक्षा संहिता की धारा 23 में धारा 76 व 77 में पुरुष व महिला अगर इन अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, दोनों ही अभियुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई महिला भी है और कोई व्यक्ति किसी की जो अश्लील वीडियो बनाने में मदद करती है, तो वो भी उसमें दोषी मानी जाएगी, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार हमारी जो पुरानी संहिता थी धारा 366A उपापन, तो उसमें बालक शब्द का प्रयोग, उपापन लड़की के स्थान पर अब बालक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उपापन बालक का भी पहले लड़की के लिए था, बालक के लिए भी उपापन का दंड का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार नई संहिता की धारा, जो पुरानी धारा थी 361 किडनैपिंग, तो उसमें लड़की की उम्र जो है 18 साल थी नाबालिग और लड़के की उम्र 16 साल तक, तो अब इसमें जो है ये दोनों धाराओं का, नई संहिता की धारा 137 में अब जो है किडनैपिंग को जो है उसमें केवल बालक शब्द को समावेश किया गया है, तो बालक शब्द में 18 वर्ष तक चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर वो विधि पूर्वक संरक्षक के संरक्षण से किडनैपिंग की जाती है, तो उसमें जो है दंड का भागी होगा।
यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, इस नए आपराधिक कानूनों में क्या जांच की प्रक्रिया को आसान किया गया है, क्या कुछ सुधार किए गए हैं पहले और अब में कानूनों के संदर्भ में?
BNSS की धारा 173 में जो है नए, उसमें जो है काफी सुधार किए गए हैं। जैसे कि अगर महिला मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो ऐसी महिला की जो रिपोर्ट है वो पुलिस जो है या पुलिस का अधिकारी उनके घर पे जाकर किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबंधक की उपस्थिति में ही लिखी जाएगी और ऐसी सूचना की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। तो ये एक नया प्राविधान को जोड़ा गया है। प्राप्त रिपोर्ट का दंड जो है, रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसमें दंड 3 वर्ष या उससे अधिक या 7 वर्ष से अधिक नहीं है, तो ऐसे में 14 दिनों के भीतर जो है मामले की जांच करके जो है डिप्टी SP इसमें इम्पावर्ड है, उसके लिए जांच की अनुमति लेकर जो है इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी।
सर, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जांच एजेंसियों को जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा या टाइम लिमिट भी तय की गई है?
जैसे पुरानी संहिता में जो सीआरपीसी की धारा 468 थी, उसमें समय सीमा काल का दिया गया है। जहां 3 साल से दंडित वाले अपराध थे तो 3 साल के अंदर जो है रिपोर्ट जो है चार्जशीट जो है कोर्ट के अंदर जानी मैंडेटरी थी, और जहां जुर्माने से थी वहां 6 महीने के अंदर जानी तय थी। ये जो नई संहिता है उसकी धारा 193 में आरोप पत्र अगर महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों के मामलों में आरोप 2 माह के अंदर जो है कोर्ट में पेश किया जाना है, ये प्रोविजन जो है नया इसमें किया गया है।
नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों में पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अगर हम महिलाओं की बात करें, उनको और किस प्रकार से ये नए आपराधिक कानून मदद करेंगे?
जैसे मैंने अभी बताया कि कम से कम 2 महीने के अंदर जो है चार्जशीट अगर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध है तो 2 माह के अंदर जो है चार्जशीट को दाखिल किया जाना है, और जो पीड़ित होगा उसको मुकदमे की प्रगति के बारे में, जैसे पहले यह था कि आपने रिपोर्ट लिखा दी तो जो विवेचक है या कोई पुलिस अधिकारी है आपको विवेचना के बारे में उसके मामले में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। अब इसमें प्राविधान किया गया धारा 193 में कि 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर पीड़ित को मुकदमे की प्रगति के बारे में बताया जाएगा कि आपकी मुकदमे में क्या प्रगति हुई है। तो ये नई चीजें कई सारी है। तीसरा जो महिला के ये नहीं है, सबके लिए है। जैसे पहले जो राज्य सरकारें केस जो है वापस लेती है 321 उसकी धारा थी जो केस वापसी की, अब वो 360 जो है उसका प्रोविजन किया गया है। उसमें जो केस 7 वर्ष से अधिक सजा से दंडित मामलों में पीड़ित और वादी को जो है सुने बिना केस की वापसी नहीं हो सकती है। कहीं कहीं उदाहरण ये भी देखने को मिलते हैं कि 302 जैसे अपराधों को भी वापस किया जाता रहा है। तो अब उस पर अंकुश लगाने के लिए यह है कि जो ग्रीवियस ऑफेंस है, गंभीर प्रकृति के अपराध है और जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, उसमें जो है पीड़ित और वादी को सुना जाना अति आवश्यक है, तत्पश्चात ही वापसी का निर्णय लिया जाएगा।
नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए आतंकवाद को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही मॉब लिंचिंग जैसे मामले हों इनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
जैसे आतंकवादी कृत्य है जिनके लिए हमारी जो पुरानी संहिता थी उसमें कहीं भी दंड का प्राविधान नहीं किया गया था, और जिसकी आज के परिवेश में जैसे कि जगह जगह बल्कि पूरे देश में छोड़िए पूरे वर्ल्ड में आतंकवादी घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो पहले इसके लिए हमारे देश में टाडा एक कानून बनाया गया था जैसा कि सबको पता ही है, लेकिन उसको भी जो टाडा को समाप्त किया गया, टाडा उल्फा कानून बने थे। अब इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मको का कानून बनाया गया था और गुजरात सरकार द्वारा गुजको का कानून बनाए गए थे, लेकिन ये कानून भी एक स्टेट में सीमित थे, अन्य जगह कोई ऐसी एक्टिविटी अगर हो तो उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में यूएपीए एक्ट जो है उसमें है कानून जो है प्रचलित है, काफी पुराना कानून है, ये 1967 का है। इसमें भी जो है कार्रवाई होती थी लेकिन कहीं पर इतनी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब सरकार द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि आतंकवादी कृत्यों पर रोक लगे, इसके लिए नई धारा का समावेश किया गया है हमारी नई संहिता में जो धारा 113 में किया गया है। संहिता की धारा 113 में केस दर्ज होता है, फर्क इतना है तो वहां जो है उस जनपद की उसी स्टेट की पुलिस जो है अन्वेषण कर सकती है, लेकिन यूएपीए एक्ट है इसमें केवल एनआईए जांच एजेंसी ही इसमें जांच कर सकती है। कठोर दंड है इसमें जो है काफी जो है मृत्यु दंड और आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान किया गया है ताकि ये घटनाएं कम हो और जो आतंकवादी घटनाओं से लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिल सके। इसी प्रकार मॉब लिंचिंग सजा का प्राविधान भी हमारी संहिता में कहीं नहीं था, नई धारा 103(2) जब मॉब लिंचिंग की धारा का समावेश किया गया है, इसमें भी कठोरतम दंड को सजा दी गई जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दंडनीय अपराध रखा गया है।
ये नए आपराधिक कानून हर दृष्टिकोण में सुधार की बात करते हैं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं इन नए अधिनियमित कानूनों में न्याय प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया गया है कि इतने दिनों के अंदर में जजमेंट या निर्णय होना है। ऐसे में अगर हम देखें तो ये न्याय प्रणाली में बदलाव की ओर भी इशारा कर रहा है। जब हम देखते हैं कि कार्रवाई प्रोसीडिंग चल रही है जिस वक्त वहां पर भी एक समय सीमा तय कर ली गई है, तो ये कितना सहायक होगा और चैलेंजिंग होगा उन सभी के लिए जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।
जी ये काफी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पहले जो है सबको विदित है कि जस्टिस मिलना एक उसको फिर न्याय जैसा नहीं रह जाता, क्योंकि पीढ़ियां गुजर जाती है, खासकर जैसे सिविल नेचर के केस हैं हमारे देश में पीढ़ियां गुजर जाती है, इस प्रकार जो क्रिमिनल केस है कम से कम उसमें त्वरित न्याय व्यवस्था जो है प्रयास हर स्टेज पे हुए हैं, तो ऐसे कई एक्ट हैं या महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उसमें समय सीमा को रखा गया है, और भी कई चीजें कि अगर मुलजिम जेल में रहता है तो 90 डेज के अंदर उसको चार्जशीट जो है अगर अपराध जो गंभीर प्रकृति का आजीवन कारा से दंडित 90 दिन के अंदर फिर भी उसका अन्वेषण कम्प्लीट होना चाहिए, अगर उससे नीचे के अपराध हैं तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट फिर भी न्यायालय के अंदर दाखिल होनी चाहिए। तो ऐसे कई स्टेप जो है अपनाए गए हैं जिससे त्वरित न्याय मिलेगा। इसी में जो है ये समन की जो तामीली भी है ये डिजिटल तौर पे की जाने की जो है प्राविधान है, ताकि गवाह भी जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट हो और जल्दी से जल्दी जजमेंट जो है पास हो सके।
एक आम आदमी यही चाहता है कि उसे न्याय जल्दी मिले और बहुत समय न लगे। जांच प्रक्रिया में अब कितनी सुलभता और कितनी यहां पर सुगमता आती हुई नजर आएगी इन नए आपराधिक कानूनों के आने से, ये कानून व्यवस्था को बदलने में कितना कारगर साबित होगा, इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं?
जी जो गंभीर प्रकृति का अपराध है उसमें कोई समय सीमा नहीं है, उसके अन्वेषण की भी रखी गई है
जी।
लेकिन अब नई संहिता में जो महिलाओं के प्रति अपराध है, बालकों के प्रति अपराध है, कुछ अपराधों में समय सीमा को तय किया गया है कि एक समय सीमा के अंदर जो है आपको चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जानी है। कुछ ऐसे एक्ट हैं, स्पेशल एक्ट हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि SC ST एक्ट में है या पॉक्सो एक्ट है, तो उसमें ये समय सीमा जो है रखी गई है, तो उससे अब जो है जल्दी से जल्दी जो है पीड़ित को जो है न्याय मिलता हुआ देखा जा सकता है, तो एक ये अच्छी पहल है।
सर मुख्य रूप से किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं जो पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और जो अब नया आपराधिक कानून आया है, और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
जैसा अभी डिस्कस भी हो चुका है, जैसे पहले FIR थी आप वहीं दर्ज करा सकते थे जहां जिस क्षेत्र में घटना घटित हुई, और अब जो है 0 FIR का प्राविधान किया गया है, और दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन FIR का कोई प्रोविजन नहीं था, अब ऑनलाइन FIR भी दर्ज की प्रोविजन रखा गया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बिना भय के बिना डर के अपने घर से भी ऑनलाइन किसी के दबाव में नहीं किसी के डर से नहीं आप ऑनलाइन जो FIR को दर्ज करा सकते हैं, भेज सकते हैं थाने को। तो ये नए कई सारे जो है बदलाव हुए हैं। दूसरा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पहले नहीं था, आज की डेट में कम से कम जो है मिल पाते हैं जो कोई गवाही दे किसी भी मामले में, कई कारणों से जो है गवाही नहीं दे पाते, तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसा घटना उसमें जो आ गई है तो उसके आधार पर जो है वो साक्षी है उसके आधार पर मुजरिम को सजा हो सकती है। आज की डेट में साइबर क्राइम जो है चरम पर है, तो अगर इसके लिए कानून में बदलाव नहीं लाया जाएगा तो कैसे, जो पुरानी संहिता में तो इसका कोई प्राविधान नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है।
कार्यक्रम के अंत में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से नए आपराधिक कानूनों को जानना क्यों जरूरी है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस प्रकार या किन माध्यमों के जरिए हम अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं।
मेरे ख्याल से सभी लोगों का ये मत भी होगा कि प्रत्येक देश के नागरिक या प्रत्येक देश के वासी को अपने देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए, और ज्यादा नहीं अगर ये 3 हमारे एक्ट बने हैं, खास कर ये BNS जो कानून है जिसमें दंड के प्राविधान है, इसकी जानकारी पाठ्यक्रम में रखकर या इसकी जो एजुकेशन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक समझते हुए, ताकि इसमें जो भी दंड है या जो भी अपराध है उसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी जरूरी है कि हमारे देश में ये चीज करने से ये अपराध है और इसका ये दंड है, इससे जो है काफी हद तक अपराधों के ऊपर रोकथाम लगेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, चाहे वो पढ़ा लिखा भी, उसको ये नहीं पता कि अगर मैं ये कृत्य करता हूं या ऐसा कार्य करता हूं तो उसका ये दंडित है, और दंड है तो कितना मुझे उसका भुगतना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो है ये कानून के बारे में जानकारी न होने से देश में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। जो एक पढ़ा लिखा आदमी भी जो है घटना में लिप्त हो जाता है, उसको ऑफेंस की ग्रेविटी या उसके दंड की ग्रेविटी का कुछ पता नहीं होता है, जिससे उसके परिवार भी इफेक्ट होता है, सभी को इफेक्ट होता है, पूरा समाज भी इफेक्ट होता है। मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि प्रत्येक आदमी को कानून का जो है जानकारी होनी चाहिए, भले ही माननीय न्यायालय हमारे प्रत्येक जनपदों में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो है लोगों को कानूनों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, इसके बावजूद भी वो नाकाफी, मेरे हिसाब से नाकाफी है। जब तक इसको हम जो है एक पाठ्यक्रम के तौर पर सबके लिए जरूरी ना रखें,
केशव सिंह चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और नए आपराधिक कानून से जुड़े तमाम तथ्यों से हमारे श्रोताओं को अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे उत्तराखंड के अभियोजन निदेशालय से अपर निदेशक विधि केशव सिंह चौहान। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पंकज सनवाल खुलबे।